आप सुन रहे हैं महाभारत के पात्र सर ऑडियो पिटारा पर मेरे यानी अनामय वर्मा के साथ।
पुराणानुसार वो है पूजित पंच कन्याओं में से एक, जिन्हें चिर कुमारिया भी कहा जाता है। पूर्व जन्म में वही थी ऋषि मृदुल की पत्नी मृदुलिनी इंद्रसेना, जिन्हें बहुत छोटी सी आयु में पति को खोना पड़ा था, जिन्होंने पति की असमय मृत्यु के बाद स्वयं को भगवान शिव की आराधना में लगा दिया था और अत्यंत कठोर तप में लीन हो गई थी। तप से प्रसन्न होकर जब भगवान भोलेनाथ ने वरदान की इच्छा प्रकट की, तब उन्होंने सर्व गुण संपन्न पति पाने की इच्छा में भाव विहल होकर अपनी कामना को शिव के आगे 5 बार दोहरा दिया था। भगवान शिव ने भी बार बार तथास्तु कहकर तब उन्हें 5 बार वरदान दिया। इस तरह 5 वरदान स्वरूप उन्हें अगले जन्म में 5 पति एवं सदा सुहागन रहने का वर मिला था। जी हां, वही तो है द्रौपदी, यज्ञ से प्रकट हुई यज्ञ सेनी द्रौपदी, देवी काली का अंशावतार द्रौपदी, 64 योगिनियों में एक योगिनी द्रौपदी, पांचाल नरेश राजा द्रुपद एवं रानी प्रसिति की कन्या पांचाली द्रौपदी, धृष्टद्युम्न सत्यजीत एवं शिखंडी की प्रिय बहन द्रौपदी, श्री कृष्ण की सखी कृष्णेयी या कृष्णा द्रौपदी, महाभारती सैरंद्री अग्निसुता द्रौपदी और चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर एवं 5ों पांडवों की पत्नी जगत सुंदरी महारानी द्रौपदी। भविष्य पुराण की एक कथा के अनुसार द्रौपदी ने पूर्व जन्म में पति की मृत्यु के बाद बहुत कष्ट झेले थे, तब उन्होंने भगवान शिव की आराधना के साथ ही ब्राह्मणों और साधुओं की भी बड़ी सेवा की थी। साधुओं की कृपा से द्रौपदी ने तब स्थाली दान व्रत किया था। स्थाली या बटलोई यानी वो पात्र जिसमें भोजन बनाया जाता है। इस व्रत के करने से उन्हें ये वरदान मिला था कि वे देवी लक्ष्मी के समान होंगी। वे जब तक स्वयं भोजन नहीं कर लेंगी तब तक इनका भोजन पात्र भरा रहेगा। द्रौपदी के इसी वरदान के कारण वनवास के समय पांडव ब्राह्मणों और अतिथियों को भोजन कराने में सक्षम थे। द्वापर में कब कहां उन्होंने जन्म लिया हम सभी जानते हैं। क्या आज की पीढ़ी को द्रौपदी 5 पतियों की एक पत्नी थी से आगे पीछे का कुछ और पता है? महाभारत के अनुसार द्रौपदी का जन्म महाराज द्रुपद के द्वारा गुरु द्रोणाचार्य से अपमान का प्रतिशोध लेने हेतु कराए गए यज्ञ के फल स्वरूप हुआ था। सच कहें तो यज्ञसेनी द्रौपदी का जन्म 2 मित्रों के आपस में अपमान के प्रतिशोध का ही परिणाम है। गुरु द्रोणाचार्य बचपन के मित्र राजा द्रुपद के द्वारा किए गए अपमान को कभी भूल नहीं पाए थे। इसीलिए शिक्षा पूर्ण होने पर जब उनके शिष्य यानी पांडव और कौरव राजकुमारों ने गुरु दक्षिणा देनी चाहिए तो उन्होंने राजकुमारों से कहा,
राजकुमारों, यदि तुम मुझे गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो पांचाल नरेश महाराज द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे सामने प्रस्तुत करो, यही तुम लोगों की सच्ची गुरु दक्षिणा होगी।
वर्षों बाद द्रोणाचार्य के लिए द्रुपद से प्रतिशोध लेने का समय आ गया था। तब कौरव और पांडव राजकुमार महाराज द्रुपद को बंदी बनाकर लाने के लिए अस्त्र शस्त्र सहित पांचाल देश की ओर रवाना हो गए। वहां भयंकर युद्ध हुआ। कौरव राजकुमारों को तो राजा द्रुपद ने बुरी तरह हरा दिया था, पर भीम और अर्जुन के पराक्रम के आगे पांचाल नरेश की सेना हार गई और अर्जुन ने आगे बढ़कर महाराज द्रुपद को बंदी बना लिया। जब पांडव पांचाल नरेश राजा द्रुपद को बंदी बनाकर ले आए और अपनी गुरु दक्षिणा स्वरूप उन पांचों ने द्रोणाचार्य के सामने उन्हें प्रस्तुत कर दिया। तब द्रुपद को बंदी रूप में देखकर द्रोणाचार्य ने कहा,
हे द्रुपद, कहो आज कैसा अनुभव हो रहा है? अब तुम्हारे संपूर्ण राज्य का स्वामी मैं हो गया हूं। क्या तुम्हें स्मरण है, मैं तुम्हें अपना मित्र समझकर तुम्हारे पास आया था, परंतु तुमने मुझे अपना मित्र स्वीकार नहीं किया था। क्या अब तुम मेरी मित्रता स्वीकार करते हो?
द्रुपद का सिर लज्जा से झुका हुआ था। क्या कहें क्या न कहें कि स्थिति में उन्होंने अपनी भूल को स्वीकारते हुए उत्तर दिया कि हे द्रोण, आपको अपना मित्र न मानना तब मेरी बड़ी भूल थी। मुझे आज उसका पश्चाताप है। मैं और मेरा राज्य आज दोनों ही आपके अधीन है। अब आपकी जो भी इच्छा हो करें। द्रोणाचार्य महाराज द्रुपद से कहते हैं,
तुमने कहा था कि मित्रता समान वर्ग के लोगों में होती है, इसीलिए मैं तुमसे बराबरी का मित्र भाव रखते हुए तुम्हें तुम्हारा आधा राज्य लौटा रहा हूं।
उसके बाद द्रोणाचार्य ने गंगा नदी के दक्षिणी तट का राज्य द्रुपद को सौंप दिया और शेष अपने लिए रख लिया था। अपमानित पांचाल नरेश उसके बाद से ही द्रोणाचार्य को नीचा दिखाने के उपाय सोचने लगे थे। उसी चिंता में एक दिन वे घूमते हुए कलमाशी नगर पहुंच गए, जहां ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले स्नातक ब्राह्मणों का ही वास था। वहां वे याज और उपयाज नामक दो कर्मकांडी ब्राह्मण भाइयों से मिले। राजा द्रुपद ने उन ब्राह्मण भाइयों की सेवा करके उन्हें प्रसन्न किया। उसके बाद उनसे गुरु द्रोणाचार्य को मारने का उपाय पूछा। तब बड़े भाई याज ने कहा,
आप एक विशाल यज्ञ का आयोजन करके अग्निदेव को प्रसन्न करिए, जिससे अग्निदेव आपको एक महान बलशाली पुत्र का वरदान देंगे, वही आपकी मनोकामना पूरी करेगा।
तब महाराज द्रुपद ने याज और उपयाज से उनके कहे अनुसार यज्ञ करवाया। हवन के फलस्वरूप उस अग्नि कुंड से एक दिव्य कुमार प्रकट हुआ, जो संपूर्ण आयुध एवं कवच कुंडल से युक्त था। प्रकट होते ही कुमार भयंकर गर्जना करने लगा। साथ ही उसी वेदी से एक कन्या का भी जन्म हुआ। कन्या के नेत्र खिले हुए कमल के समान थे और उसकी भौहें चंद्रमा के समान वक्र थी। उसका वर्ण श्यामल था, यानी वो सांवली थी। कन्या अत्यंत सुंदर थी, मानो कोई देवांगना मनुष्य रूप में आ गई। महाराज द्रुपद ने न चाहते हुए भी उस कन्या का दायित्व उन्हें लेना पड़ा। इसके बाद ब्राह्मणों ने दिव्य कुमार और कुमारी का नामकरण किया। ब्राह्मणों ने कहा,
ये कुमार असहिष्णु और बलवान एवं रूपवान होने के साथ ही कवच कुंडल धारण किए हुए है। इन पर अग्नि का प्रभाव दिखाई देता है, इसीलिए बालक का नाम धृष्टद्युम्न होगा। और ये सुंदर कन्या चूंकि कृष्ण वर्ण की है, इसीलिए उसका नाम कृष्णा होगा। पांचाल नरेश महाराज द्रुपद की पुत्री होने के नाते कृष्णा का नाम पांचाली व द्रौपदी पड़ा।
द्रौपदी यज्ञ से प्रकट हुई थी, इसीलिए उन्हें यज्ञ सेनी भी कहा गया। द्रौपदी के जीवन में कभी भी कुछ सामान्य नहीं था। वो चाहे पूर्व जन्म की ऋषि पत्नी मुद्रलिनी इंद्रसेना रही हूं, या फिर बाद में पांचाल नरेश महाराज द्रुपद की पुत्री पांचाली द्रौपदी। पांच पतियों की पत्नी होते हुए भी क्यों द्रौपदी को चिर कुमारी पंच कन्याओं में से एक होने का पवित्र पद प्राप्त हुआ?
ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट और ऑडियो स्टोरीज के लिए सुनते रहिए ऑडियो पिटारा। ऑडियो पिटारा, सुनना जरूरी है।